लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं, बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel cammino di catechesi sulla passione evangelizzatrice, cioè lo zelo apostolico, oggi ci soffermiamo sulla testimonianza di San Daniele Comboni.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम सुसमाचार के प्रति उत्साह संबंधी अपनी धर्म शिक्षा माला के तहत आज संत दानियल कोम्बोनी के साक्ष्य पर चिंतन करेंगे। उनमें अफ्रीका के लिए एक प्रेरितिक उत्साह भरा हुआ था। वहाँ के लोगों के प्रति अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करते हुए वे लिखते हैं, उन्होंने मेरा दिल चुरा लिया है जो सिर्फ उनके लिए जीता है। मैं अपने होठों में अफ्रीका का नाम उच्चरित करते हुए मरूंगा। वे पुनः लिखते हैं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब मैं वहाँ की जनता के लिए अपने प्राण निछावर करूँगा। ये अभिव्यक्तियाँ उस व्यक्ति की थीं जो ईश्वर से प्रेम के कारण अपने भाई बहनों की सेवायुक्त प्रेरिताई में संलग्न था। वे उनके लिए इस बात को घोषित करने में कभी नहीं थके कि यीशु ख्रिस्त ने उनके लिए भी दुख उठाया और मर गए। इन बातों को उन्होंने एक भयावह गुलामी के संदर्भ में सुदृढ़ किया जिसका साक्ष्य वे स्वयं रहे। संत पापा ने कहा कि गुलामी लोगों को वस्तुओं की तरह बना देती है जो किसी के द्वारा सिर्फ उपयोगिता तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, लेकिन यीशु ईश्वर के पुत्र जो मानव बने, हर मानव के सम्मान को ऊपर उठाते और गुलामी के झूठ को तोड़ते हैं। ख्रिस्त में आलोकित कोम्बोनी गुलामी की बुराई से वाकिफ थे। उससे भी बढ़कर उन्होंने इस बात को समझा कि सामाजिक गुलामी की जड़ता गुलामी से कहीं अधिक है, जहां हम हृदय की गुलामी, पाप की गुलामी को पाते हैं जिनसे यीशु हमें स्वतंत्र करते हैं ख्रिस्तियों के रूप में। अतः हम हर तरह की गुलामी से लड़ने हेतु बुलाए जाते हैं। दुर्भाग्यवश यद्यपि गुलामी उपनिवेश की तरह अतीत की कोई चीज नहीं है, अफ्रीका जिसे कोम्बोनी बहुत अधिक प्रेम करते थे आज बहुत सारे युद्धों से विखंडित है। राजनीतिक शोषण ने एक आर्थिक उपनिवेश को जन्म दिया है जो गुलामी के बराबर है। यह एक अति दुखद बात है कि आर्थिक रूप से विकसित देश बहुधा इस संबंध में अपनी आँखों, कानों और मुंह को बंद कर लेते हैं। संत पापा ने कहा, मैं अतः अपनी अपील को दोहराते हुए कहता हूँ,
बस्ता सोफोकारे लाफ्रिका,
अफ्रीका का गला घोटना बंद करें। यह कोई खदान नहीं जिसका दोहन किया जाए या एक भूमि नहीं जिसे लूटा जाए। पहली अवधि समाप्त करने के बाद स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें वहाँ प्रेरिताई छोड़ना पड़ा। स्थानीय जटिल परिस्थितियों की पर्याप्त जानकारी से अनभिज्ञ मलेरिया के संपर्क में आने से बहुत से प्रेरितों की मृत्यु हो गई। वहीं बहुतों ने अफ्रीका छोड़ दिया, लेकिन कोम्बोनी ने ऐसा नहीं किया। आत्म परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि ईश्वर उन्हें सुसमाचार प्रचार के नए मार्ग में बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अपने इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया। अफ्रीका को अफ्रीका से बचाओ। यह एक शक्तिशाली प्रेरणा थी जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रेरिताई को नए रूप में शुरू करने की मदद मिली। वे लोग जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया था वे न केवल वस्तुएं बल्कि प्रेरितिक प्रजा थे। अतः संत दानियल कोम्बोनी सभी ख्रिस्तियों को सुसमाचार प्रचार के नायक बनाना चाहते थे। इस उत्साह से उन्होंने अपने विचारों को कार्यान्वित किया। उन्होंने स्थानीय धर्म बंधुओं की सहायता से लोक धर्मियों को धर्म प्रचार की सेवा हेतु प्रोत्साहित किया। इसमें उन्होंने मानवीय विकास की संभावना देखी जिसके द्वारा कला और व्यावसायिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने परिवारों की भूमिका और परिवार की माताओं को समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाने हेतु तैयार किया। संत पापा ने कहा,
E quanto è importante anche oggi far progredire la fede e lo sviluppo umano dall'interno.
यह आज भी कितना महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा हम विश्वास और विकास को प्रेरितिक संदर्भ में प्रगति के मार्ग में ले सकते हैं, न कि बाह्य नीति या सुखी कल्याण की योजनाओं को लागू करने में। कुम्बोनी का महान प्रेरितिक उत्साह यद्यपि मुख्य रूप से मानव प्रयास का प्रतिफल नहीं था, वे स्वयं अपने साहस या प्रेरणा के माध्यम आगे नहीं बढ़े, जो महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, न्याय और शांति से प्रेरित होता है। उनमें उत्साह का उद्गम सुसमाचार की खुशी से शुरू हुई जो ख्रीस्त के प्रेम से उत्पन्न होती है, और उस प्रेम ने उन्हें ख्रीस्त के प्रेम की ओर अग्रसर किया। संत दानियल ने लिखा, इस तरह का कठिन और मेहनत भरा प्रेरितिक कार्य जैसे कि हमारा है, स्वार्थ और खुद गर्जी की टेढ़ी गर्दन से नहीं किया जा सकता है, जो उनके स्वास्थ्य और आत्माओं को बचाने की चिंता नहीं करते जैसे कि उन्हें करने की जरूरत है। संत पापा ने इस तरह के मनोभाव को याजकीयवाद की महामारी बतलाई। उन्होंने आगे लिखा, यह जरूरी है कि हम उन्हें प्रेम से प्रज्वलित करें जिसकी उत्पत्ति ईश्वर और ख्रीस्त के प्रेम में होती है। जब कोई सच्चे अर्थ में ईश्वर को प्रेम करता है तो कमियां, दुख, तकलीफें और शहादत मीठी हो जाती हैं। कोम्बोनी ने मेहनती, खुश, समर्पित प्रेरितों को देखने की चाह रखी। उन्होंने लिखा, पवित्र और योग्य सर्वप्रथम संतगण अर्थात पूरी तरह पाप मुक्त और ईश्वर में भययुक्त और नम्र, लेकिन यह काफी नहीं है। हमें प्रेम की जरूरत है जो लोगों को सक्षम बनाता है। संत पापा ने कहा,
La fonte della capacità missionaria per Comboni è dunque la carità.
कुम्बोनी के लिए प्रेरितिक योग्यता इस भांति प्रेम था, विशेष रूप से उत्साह जो लोगों की पीड़ा को अपनाता हो। वही सुसमाचार के प्रति उत्साह ने उन्हें कभी अकेले कार्य करने को अग्रसर नहीं किया, लेकिन वे सदैव कलीसिया के समुदाय में रहे। मेरे पास केवल एक जीवन है जिसे मैं आत्माओं की मुक्ति के लिए अर्पित कर सकता हूँ। मेरी चाह है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हजारों समर्पित हों। संत पापा ने कहा, संत दानियल ने भले चरवाहे का साक्ष्य दिया जो अपनी खोई हुई भेड़ की खोज में जाता और अपने जीवन को झुंड के लिए अर्पित करता है। उनका उत्साह उदासी और अलगाव की परिस्थितियों में अदम्य और जोशीला था। अपने पत्रों में उन्होंने मातृत्वमयी कलीसिया का आह्वान किया जो लंबे समय तक अफ्रीका को भूल गई थी। कलीसिया के सपने के संबंध में कोम्बोनी कहते हैं, इतिहास से क्रूसित लोगों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करने की जरूरत है जिससे वे पुनरुत्थान का अनुभव कर सकें। संत पापा ने उन लोगों की याद करने का आह्वान किया जो अन्याय और निर्दयता के शिकार हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, उनका साक्ष्य हमारे लिए कलीसिया के हर नर और नारी से इस बात की मांग करता है कि हम गरीबों को ना भूलें, उन्हें प्रेम करें, क्योंकि क्रूसित यीशु उनमें उपस्थित हैं जो जी उठने की प्रतीक्षा करते हैं। संत पापा ने अंत में पुनः इस बात पर जोर दिया कि हम गरीबों को ना भूलें, क्योंकि ये वे हैं जो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेंगे। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sin nomine Domini benedictum. Aeternum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। दक्षिण काकेशस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने देशों से हथियार बंद करने और नागोर्नो काराबाख में शांतिपूर्ण समाधान खोजने की अपील की। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार के आम दर्शन समारोह में अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और इतालवी भाषा भाषी तीर्थयात्रियों को अपने अभिवादन में नागोर्नो काराबाख के पीड़ित लोगों को याद किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हथियारों को शांत करने और नागोर्नो काराबाख में शांतिपूर्ण समाधान खोज करने की अपील की। संत पापा ने कहा, कल मैंने दक्षिणी काकेशस के नागोर्नो काराबाख से परेशान करने वाली खबरें सुनी, जहां पहले ही गंभीर मानवीय स्थिति अब अतिरिक्त सशस्त्र संघर्षों से और ज्यादा बदतर हो गई है। इसके समाधान हेतु मैं इसमें शामिल सभी लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हार्दिक अपील करता हूं कि हथियारों को शांत किया जाए और लोगों की भलाई और मानवीय गरिमा के सम्मान के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने के हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके बाद संत पापा फ्रांसिस ने शहीद यूक्रेन को भी याद किया और इतालवी गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोर्जियो नापोलितानो के लिए प्रार्थना की, जो गंभीर रूप से बीमार हैं। विदित हो कि अजरबैजान ने मंगलवार को नागोर्नो काराबाख में सैन्य अभियान शुरू किया। अजरबैजानी रक्षा मंत्रालय ने सैन्य अभियान की घोषणा की। इसे अर्मेनियाई बलों द्वारा चल रहे हमलों के खिलाफ और हाल के दिनों में एक खदान विस्फोट में हुई कई अजरबैजानी नागरिकों और पुलिस कर्मियों की मौत के बाद एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के रूप में वर्णित किया। विभिन्न मीडिया के अनुसार अजरबैजानी सेना ने पहले ही अर्मेनियाई नियंत्रण वाले मुख्य शहर पेटानाकर्ट और अन्य अर्मेनियाई शहरों पर बमबारी की है। अर्मेनियाई अधिकारियों ने एक बच्चे सहित दो नागरिकों के हताहत होने और 23 के घायल होने की सूचना दी। अजरबैजानी अधिकारियों ने तोपखाने के हमले के बाद क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शहर शुशा में एक नागरिक के मौत की सूचना दी। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने नागोर्नो काराबाख की स्थिति को देखते हुए लड़ाई को तत्काल समाप्त करने, तनाव कम करने और 2020 के युद्ध विराम और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के सिद्धांतों का अधिक सख्ती से पालन करने का आह्वान किया। यह बात उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताई। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव क्षेत्र में अन्य बल के उपयोग और नागरिक आबादी सहित पीड़ितों के रिपोर्टों के बारे में बेहद चिंतित हैं। उन्होंने क्षेत्र में विश्वास बनाने और दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने में मदद करने के प्रयासों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए पार्टियों का आह्वान किया। और संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को संत पापा जॉन 23वें के ऐतिहासिक विश्व पत्र पाचेम इन तेरिस अर्थात पृथ्वी पर शांति के प्रकाशन की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सामाजिक विज्ञान अकादमी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। अकादमी के चांसलर कार्डिनल पीटर टर्कसन को संबोधित अपने संदेश में संत पापा ने कहा कि यह सम्मेलन हो रहा है क्योंकि हमारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के चपेट में है जो टुकड़ों में लड़ा जा रहा है और संघर्ष के दुखद मामले में यूक्रेन परमाणु हथियारों के खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने वर्तमान क्षण की तुलना पाचेम इन तेरिस के प्रकाशन से आगे बढ़ने वाले क्षण से की जब अक्टूबर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। संत पापा फ्रांसिस ने सम्मेलन को पाचेम इन तेरिस के उन हिस्सों पर अपना चिंतन समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो निरस्त्रीकरण और स्थायी शांति के मार्गों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से शांति के लिए वर्तमान सैन्य और प्रौद्योगिकी आधारित खतरों का विश्लेषण करने के साथ साथ परमाणु हथियारों के निरंतर कब्जे से जुड़े गंभीर जोखिमों, निरस्त्रीकरण में नए सिरे से प्रगति की तत्काल आवश्यकता और शांति निर्माण पहल के विकास पर अनुशासित नैतिक चिंतन का आग्रह किया। संत पापा ने 2019 में हिरोशिमा में शांति स्मारक में दिए गए अपने बयान को दोहराते हुए कहा, युद्ध के उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग अनैतिक है, जैसे परमाणु हथियार रखना अनैतिक है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया संभव और आवश्यक है। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस की मार्सिले की आगामी यात्रा का आधिकारिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। संत पापा इस सप्ताह शुक्रवार से शनिवार तक दक्षिणी फ्रांसीसी शहर मार्सिले में रहेंगे और भूमध्य सागरीय बैठकों के समापन सत्र में भाग लेंगे। संत पापा शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से प्रस्थान करेंगे और 4:15 बजे मार्सिले पहुंचेंगे। वहां फ्रांस के प्रधानमंत्री के आधिकारिक स्वागत के बाद वे नोटर डेम महागिरजाघर जाएंगे, जहां वे पहले स्थानीय धर्म प्रांत के पुरोहितों के साथ प्रार्थना करेंगे और फिर बाद में स्टेला मारिस, कारितास, गैब ब्रायन और एसोसिएशन दी सेकोर संगठनों के सदस्यों के साथ प्रार्थना करेंगे। ये संगठन नाविकों, प्रवासियों और शरणार्थियों की प्रेरितिक देखभाल के लिए समर्पित है। अगले दिन शनिवार को वे उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप के धर्माध्यक्षों और युवाओं के भूमध्य बैठकों के अंतिम सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से निजी तौर पर मुलाकात करेंगे। दोपहर के भोजन के बाद संत पापा मार्सिले के वेलोड्रोम स्टेडियम में स्थानीय लोक धर्मियों के लिए पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद वे रोम के लिए प्रस्थान करेंगे और रात 8:50 पर रोम पहुँचेंगे। संत पापा की यह विदेश में 44वीं प्रेरितिक यात्रा होगी। और संत पापा फ्रांसिस ने 20 सितंबर को ट्वीट प्रेषित कर सभी ख्रिस्तियों से सुसमाचार के वाहक बनने हेतु प्रेरित किया। संदेश में संत पापा ने लिखा, प्रभु येसु ने हमें सुसमाचार सौंपा है ताकि हम दुनिया के अंधेरे में उनकी रोशनी ला सकें। कृपया अपने अंदर की इस रोशनी को बुझाएं नहीं बल्कि इसे साझा करें ताकि भाईचारा जगमगा सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।